प्रस्तुत है कार्यक्रम एक मुलाकात जरूरी है। इस कार्यक्रम में हम आपको फिल्म जगत के कुछ प्रतिष्ठित और कुछ उभरते हुए कलाकारों से मुलाकात करवाते हैं। इनसे मुलाकात करते हैं सजीव सारथी, रेडियो प्लेबैक इंडिया के सौजन्य से प्राप्त। आइए सुने आज का ये कार्यक्रम।
एक मुलाकात जरूरी है उन कलाकारों से जो अपने स्वर सुर और शब्दों से हमें हंसाते हैं, रुलाते हैं और हमारा मनोरंजन करते हैं। यही उद्देश्य है कार्यक्रम एक मुलाकात जरूरी है का, जो आता है सिर्फ और सिर्फ रेडियो प्लेबैक इंडिया पर। और इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत कर रहा हूं मैं, यानी आपका साथी सजीव सारथी। दोस्तों, आज के जो हमारे मेहमान हैं इस कार्यक्रम में, मशहूर गजल गायिका भारती विश्वनाथन। भारती जी की एक एल्बम रिलीज हो चुकी है जो बहुत कामयाब रही, और उनकी दूसरी एल्बम एक इशारा बहुत जल्दी ही रिलीज होने वाली है। स्वागत करते हैं भारती जी का।
बहुत बहुत शुक्रिया सजीव जी, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
भारती जी, आपकी दूसरी एल्बम एक इशारा जल्दी ही रिलीज होने वाली है, तो थोड़ा सा इसी एल्बम से हम लोग शुरू करते हैं, तो इनके शायर कौन है?
सजीव जी, चूंकि मेरे पहले एल्बम एक मुलाकात में पुराने शायरों की, जो क्लासिकल शायर क्लासिक शायर हुआ करते हैं हमारे, उनकी गजलें मैंने ली थी। इस बार एक इशारा में मैंने समकालीन शायरों की गजलें ली हैं, आजकल के जो शायर हैं। इस एल्बम में 6 गजलें मैंने ली हैं, 4 शायर हैं। राजदान राज साहब की गजल है, एक इशारा तो कोई चाहिए जीने के लिए। जनाब आलम खुर्शीद साहब की गजल ली है, तुम जिसको ढूंढते हो ये महफिल नहीं है वो। जनाब जगदीश प्रकाश जी हैं, एक तसव्वुर मेरा मुकद्दर है, ये गजल मैंने उनकी ली है। एक और गजल उनकी ली है मैंने, जिंदगी से हमें मिला क्या है। फिर डॉक्टर इब्राहिम अश्क साहब की 2 गजलें ली हैं, देखा तो कोई और था सोचा तो कोई और, फिर हम तुम्हारे शहर में आकर गजल कहें।
जी, और इन गजलों को संगीतबद्ध आपने खुद किया या कोई और संगीतकार हैं इन गजलों के?
जी, इस एल्बम की तमाम गजलों को संगीत में पिरोने की कोशिश मैंने की है। इसमें जनाब अनवर हुसैन साहब के गाइडेंस में संगीत का जो ताना बाना बुनने की कोशिश की है।
जी, बहुत अच्छे भारती जी। चूंकि अभी एल्बम रिलीज नहीं हुई है तो शायद हम इसकी कोई गजल अपने श्रोताओं को मुकम्मल तौर पे तो सुनवा नहीं पाएंगे, पर आपसे अनुरोध है कि आप अपनी कोई पसंदीदा गजल इस एल्बम में से हमारे श्रोताओं के लिए सुना दीजिए प्लीज।
जी जरूर, इस एल्बम की टाइटल सॉन्ग जो है, टाइटल गजल जो मैंने लिया है, उसकी चंद लाइनें पेश करने की इजाजत चाहूंगी। इशारा तो कोई चाहिए जीने के लिए, गम तुम्हारा तो कोई चाहिए जीने के लिए, इशारा अब मोहब्बत तो किसी से भी न हो पाएगी, अब मोहब्बत तो किसी से भी न हो पाएगी, पर सहारा तो कोई चाहिए जीने के लिए, हम तुम्हारा तो कोई चाहिए जीने के लिए, एक इशारा
अब मोहब्बत तो किसी से न हो पाएगी, एक सहारा तो चाहिए जीने के लिए। बहुत सुंदर भारती जी, बहुत अच्छी गजल है, धुन भी बहुत प्यारी है और आपने गाया तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। अब थोड़ा सा हम लोग ये जानते हैं कि आप की जो शुरुआत है गायकी में वो कैसे हुई, और किस उम्र में आपने गाना शुरू किया और क्या तालीम आपने ली गायकी की?
جی جب میں 3 سال کی تھی تب سے میں نے گانا شروع کیا، ایسا میری ماں بتاتی ہیں مجھے. سب سے پہلے میں نے اسٹیج پر 5 ایئرس کی عمر میں گایا تھا. شروعاتی تعلیم میں نے اپنے ماں شریمتی گرجا وشوناتھن جی سے لی. انہوں نے مجھے میوزک کے بارے میں شروعاتی گیان دیا. اس کے بعد میں نے ودھیوت تعلیم پدم شری استاد عبد اللطیف خان صاحب سے لی. کلاسیکل اور غزل دونوں کی تعلیم میں نے ان سے لی ہے. اور ان کی دیہانت کے اپرانت ان کے بڑے بیٹے جناب انور حسین صاحب سے بھی کلاسیکل اور غزلوں کی تعلیم لی ہے میں نے.
جی تو یہ آپ نے غزلوں کو ہی کیوں چنا اپنے گائن کے لیے؟ کیا یہ سوبھاوک آپ کی روچی تھی ان میں یا کچھ سوچا سمجھا ہوا پلان تھا اس طرح سے؟
دراصل میرے پتا جی گورنمنٹ جاب میں تھے اور ان کا ٹرانسفریبل جاب تھا اور زیادہ تر وہ نارتھ انڈیا میں ہی پوسٹڈ رہے. میرا تو جنم ہی بھوپال میں ہوا ہے اور یہاں کافی سال میں نے یہیں بتائے ہیں اور یہیں میں نے سنگیت سیکھنا بھی شروع کیا. کوئی سوچی سمجھی تو یہ نہیں تھی، پلان نہیں تھی کہ غزل میں ہی آنا ہے. دراصل جیسے آج کل ایکسپوجر پروگرامس ہوتے ہیں، پہلے بچپن میں یہاں کمپٹیشنس ہوا کرتے تھے اسکول کے، تو میں نے ایک غزل گائی تھی جس میں مجھے بہت داد ملی، بہت واہ واہی ملی. آپ کی آواز بہت آشا جی اور مدھورانی جی سے ملتی ہے، ایسا کسی نے مجھے کہا. تو کیونکہ میں نے ان کو سنا ہی نہیں تھا اس لیے پھر میں نے معلوم کیا اور ان کی سی ڈی اور ان کا کیسٹ حاصل کیا کہیں سے، اور جب میں نے انہیں سنا تو میری زندگی ہی بدل گئی کہ یہ تو الگ ہی دنیا ہے. فلمی گانے یا کلاسیکل، یہ تو ہے ہی کلاسیکل، تو خیر میں سیکھ رہی تھی، لیکن غزل کچھ ایسی چیز تھی کہ الگ ہی اس سے میرا ایک کنیکشن ہو گیا اور پھر اس کے بعد میرا سفر اس کے بعد سے جاری ہے.
جی بھارتی جی، تو کیوں نہ آپ کی آواز میں کوئی غزل سنتے ہوئے ہم آگے بڑھیں. آپ کی جو پہلی البم تھی جس میں آپ نے مشہور شاعروں کی غزلیں گائی تھی، تو ان میں سے کون سی غزل آپ ہمارے شروتاؤں کو سنوانا چاہیں گے؟
جناب مرزا غالب صاحب کی غزل کی دو چند لائنیں پیش کر رہی ہیں. میری پچھلی البم ملاقات کی پہلی غزل ہے اور کافی پسند کی گئی ہے، میری پسندیدہ بھی ہے، اور اس کی چند لائنیں پیش کرنے کی اجازت چاہوں گی.
نہیں آتے
दोस्तों, कार्यक्रम चल रहा है एक मुलाकात जरूरी है और आप हैं रेडियो प्लेबैक इंडिया पर। मैं हूं आपका साथी सजीव सारथी और आज के हमारे जो मेहमान हैं वो है मशहूर गजल गायिका भारती विश्वनाथन जी, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। भारती जी, ये बताइए कि ये जो आपकी पहली एल्बम रिलीज हुई थी, इसकी कहानी क्या है? मतलब किसी म्यूजिक कंपनी ने आपको अप्रोच किया या कैसे आपकी ये पहली एल्बम मार्केट में आई?
भोपाल के मेरे कुछ मित्र कोलकाता में बेस्ड हैं, वो उनका संबंध एक्चुअली ITC संगीत रिसर्च एकेडमी से भी है। मेरी गज़लें वो सुना करते थे और वहाँ भी उन्होंने सुनवाई काफ़ी म्यूज़िक रिलेटेड पर्सन्स को। फेसबुक पर भी थी, यूट्यूब पर भी थी कुछ गज़लें जो मैंने यूं ही रिकॉर्ड करके, या आकाशवाणी दूरदर्शन की जो अपनी मेरी जो गज़लें थी वो यूट्यूब में भी अपलोडेड थी। तो इस तरह से एक संयोग बना कि उन्हें पता लगा और उन्होंने विहान म्यूज़िक कंपनी वालों ने मुझे संपर्क किया और इसकी रूपरेखा बनी मुलाकात की और सिलसिला बना एक, और ये गज़ल एल्बम फिर सामने आया।
जी, तो पहली गज़ल जो आपने स्टूडियो में रिकॉर्ड की वो कौन सी थी और पहली बार स्टूडियो में रिकॉर्ड करने का जो अनुभव था वो कैसा था, ये बताइए।
सबसे पहली रिकॉर्डिंग तो मेरी आकाशवाणी में हुई थी जब व्हेन आई वाज वेरी यंग। उस एक्सपीरियंस की बात करूं तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था। आई वाज वेरी नर्वस, एट द सेम टाइम आई वाज वेरी एक्साइटेड। बट अगर एल्बम की अगर बात करें और एल्बम की जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए जो मैं फर्स्ट टाइम माइक के सामने आई, तो वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। उस वक्त दिमाग में ये था कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि बिहान म्यूज़िक वालों ने मुझे संपर्क किया है और ये गज़लें पूरी दुनिया सुनेगी और वर्ल्ड वाइड लॉन्च होगी ये, तो ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। हमारे भोपाल के अजीमो तरीन शायर हैं जहाँ कदर चुगताही साहब, उनकी गज़ल मैंने गाई थी जो मेरी पहली गज़ल थी एल्बम की मुलाकात की। उसका भी एक अलग वाक़या है। एक्चुअली कोलकाता में जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे थे, खूब तेज़ बारिश हो रही थी, जुलाई का मंथ था और मेरी पहली गज़ल बारिश के ही ऊपर थी। गिर के जब आई घटा दिन जो सुहाने आए, हमको फिर याद सभी भूले फसाने आए। घिर के जब आई घटा दिन जो सुहाने आए, ये हवाएं ये घटाएं ये बरसती बूंदे, ये हवाएं ये घटाएं बरसती बूंदे, मेरे हमदर्द मुझे यार रुलाने आए। घिर के जब आई घटा दिन जो सुहाने आए।
जी, बहुत खूब भारती जी। अच्छा, आप किसी विद्यालय में पढ़ाने का भी काम करते हैं, तो क्या आपका विषय संगीत ही है या कुछ और है?
जी हाँ, मैं एक नामी विद्यालय की संगीत फैकल्टी का हिस्सा हूँ और अपना खुद का भी एक संगीत विद्यालय चलाती हूँ।
जी अच्छा भारती जी, अगर आपको भविष्य में अगर बॉम्बे इंडस्ट्री से या फिल्मों में गाने का अगर मौका मिलता है तो क्या आप वो भी करना चाहेंगे या अपने आप को गज़लों तक ही सीमित रखना चाहेंगे?
सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि फिल्म म्यूज़िक से इतर जो म्यूज़िक है, गज़ल हो, लाइट म्यूज़िक हो, ठुमरी दादरा गज़ल क्लासिक, सब संगीत का ही हिस्सा है। जस्ट इसके श्रोता शायद सीमित हों, कुछ कम हो इनका दायरा, लेकिन इसके भी श्रोता हैं। और गज़ल गाना मेरा पैशन है, तो गज़ल तो गा ही रही हूँ और गाती रहूँगी। اور رہا سوال فلموں کا یا وہاں سے کچھ چانس ملنے کا، تو اسی زونر میں اگر مجھے کوئی موقع ملتا ہے تو ضرور گانا چاہوں گی، وائی ناٹ؟
جی بھارتی جی، یقیناً غزل کے قدردان کبھی کم نہیں ہوں گے۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کی جو نئی البم ہے اس میں ابراہیم اشک صاحب کی دو غزلیں ہیں، دراصل ابراہیم صاحب ہمارے اس کاریکرم میں مہمان بن کر آ چکے ہیں اور ہم سب کے بہت پریے ہیں، تو کیا آپ ان کی دو غزلوں میں سے کسی ایک غزل کا مکھڑا ہمیں سنا سکتے ہیں؟
جی ضرور۔ پھر ہم تمہارے شہر میں آ کر غزل کہیں، پھر ہم تمہارے شہر میں آ کر غزل کہیں، یہ آرزو ہے خود کو مٹا کر غزل کہیں، پھر ہم تمہارے شہر میں آ کر غزل کہیں۔
بھارتی جی، آپ ہمارے اس شو میں آئے اور ہم سے اتنی ساری آپ نے باتیں کی، حالانکہ آپ کا گلا بیٹھا ہوا ہے، باوجود اس کے آپ نے ہمیں اپنی مدھر آواز میں اتنی ساری غزلیں سنوائی اور واقعی آپ سے بات کر کے بہت مزہ آیا، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے شروتاؤں نے بھی اس ایپیسوڈ کو خوب انجوائے کیا ہوگا۔ آپ کی ہی ایک غزل پر میں فی الحال اپنے شروتاؤں سے ودا لیتا ہوں، اجازت، نمسکار، اور ایک بار پھر آپ کا بہت بہت دھنیہ واد۔
سجیو سر، آپ سنگیت اور ساہتیہ کی دنیا میں جو یہ پرچار پرسار کا ایک خوبصورت کام کر رہے ہیں، یہ بہت سراہنیہ ہے۔ مجھے بے حد خوشی ہے کہ میں آپ کے اس لوک پریہ کاریکرم کا ایک حصہ بنی اور مجھے اپنی بات کہنے کا آپ نے موقع دیا، بہت بہت شکریہ، اور آپ کے اس شو کے لیے میری بہت ساری شبھ کامنائیں۔